घर परिवार।
प्रिय श्रोतागण, साप्ताहिक कार्यक्रम घर परिवार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है स्वाति और सैयद मैसाम का सलाम स्वीकार कीजिए।
बहुत से लोग हमारे जीवन में आते और चले जाते हैं, लेकिन जीवन की सुंदरता ये है कि हमारा परिवार सदैव हमारे साथ रहता है। वही लोग परिवार हैं जो आपको अपना समझते हैं और आपको उसी तरह स्वीकार करते हैं जिस तरह आप हैं, और आपको खुश करने के लिए हर कार्य करते हैं।
श्रोताओं, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि इंसान जिस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता का आभास करता है वह यह है कि कोई उसका जीवन साथी हो, ताकि उसके साथ शांति का आभास करे, उससे प्रेम करे, अपने दिल की बात उससे कर सके और उसके लिए जो कुर्बानियां देता है वह उसका बदला दे सके। इस इंसान की इस आवश्यकता का सही ढंग से प्रबंधन किया जाना चाहिए। अमेरिकी मनोचिकित्सक माज़लो शारीरिक आवश्यकता को इंसान की सबसे पहली आवश्यकता समझते हैं, जिसमें खाना, पीना और यौन इच्छा आदि शामिल है।
जो चीज़ इस प्रकार की मांग व आवश्यकता की सर्वोत्तम ढंग से पूर्ति कर सकती है वो विवाह है। ईश्वरीय धर्म इस्लाम में विवाह पर बहुत बल दिया गया है। अगर इंसान की आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विवाह न किया जाए और जीवन साथी का चयन न किया जाए तो जो युवा लड़के और लड़कियां हैं उन्हें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना होगा और उनकी भरपाई लगभग असंभव होगी। इसी कारण इस समय के जो परिवार हैं उनकी एक गंभीर चिंता परिवार के परिप्रेक्ष्य से बाहर जवान लड़के और लड़कियों के मध्य विस्तृत होते संबंध हैं। नूतनता, दूसरी संस्कृतियों का प्रभाव, नगरों में विस्तार, छोटे नगरों और गांवों में रहने वालों का बड़े नगरों की ओर पलायन आदि वे चीज़ें हैं जो सामाजिक मूल्यों की सीमाएं ख़त्म कर देती हैं। आज की जो दोस्तियां होती हैं जवान लड़कों और लड़कियों के कथानुसार वे एक दूसरे से परिचित होने और टाइम पास करने के लिए होती हैं, और कभी अपने कार्यों का औचित्य दर्शाने के लिए वे कहते हैं कि विवाह करना है, इसके लिए अधिक पहचान की आवश्यकता है। लेकिन अंत में लड़कियों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है।
लड़के लड़कियों के मध्य जो संबंध है उसके लिए हर समाज में एक परिभाषा है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी और गैर इस्लामी समाजों में लड़के और लड़कियों के मध्य जो संबंध है वे उन्हीं पर छोड़ दिए गए हैं, यानी यह कार्य उन्हीं पर छोड़ दिए गए हैं कि वे आपसी सहमति से जिससे चाहें दोस्ती करें। यद्यपि पश्चिमी मनोचिकित्सक लड़के और लड़कियों के मध्य संबंधों से सहमत है, परंतु उन्होंने परिवार और यौन संबंधों आदि के बारे में जो किताबें और लेख लिखे हैं उनमें उन्होंने इस प्रकार की दोस्ती और संबंधों के दुष्परिणामों को बयान किया है। लड़के और लड़कियों के मध्य दोस्ती और संबंधों की आज़ादी का नतीजा बहुत सी शारीरिक बीमारियां, गर्भपात और बच्चों को ऐसे ही छोड़ देने जैसी बहुत सी समस्याएं हैं। ये वे समस्याएं हैं जिनका पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका को सबसे अधिक सामना है।
आंकड़ों के अनुसार अवैध संबंधों से गर्भवती होने वाली महिलाओं व लड़कियों में अमेरिका सबसे आगे है, और जो लोग शारीरिक संबंधों के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं उनमें प्रति वर्ष 1.9 करोड़ लोगों की वृद्धि हो रही है। आज विश्व के हर देश की तुलना में सबसे अधिक तलाक अमेरिका में होता है, जो इस देश में पारिवारिक संबंधों के सबसे अधिक कमजोर होने का चिन्ह है।
वास्तविकता यह है कि यौन आज़ादी सामाजिक समस्याओं व अपराधों के अस्तित्व में आने का महत्वपूर्ण कारण है। एलेक्सिस कॉल कहते हैं कि यौन इच्छा बेताज बादशाह की भांति है। राष्ट्रों का इतिहास अधिकांश परिवारों के यौन संबंधों की भांति है। बहुत से मर्दों ने अपनी कामवासना की पूर्ति के लिए अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा सबसे हाथ धो लिया है।
कार्यक्रम के एक श्रोता ने इस संबंध में इस्लामी दृष्टिकोण को जानना चाहा है। इस संदर्भ में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस्लाम एक परिपूर्ण व परिपक्व धर्म के रूप में कानूनी संबंधों की दिशा में न केवल किसी प्रकार की बाधा व रुकावट नहीं है, बल्कि कानून के परिप्रेक्ष्य में होने वाले संबंधों को वैचारिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक परिपूर्णता का कारण समझता है। और इस्लाम धर्म में लड़के व लड़कियों के मध्य अवैध व गैरकानूनी संबंधों का कोई स्थान नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस्लाम जवान लड़के और लड़कियों के अवैध तरीके से एक दूसरे के साथ रहने का विरोधी है। इस्लाम धर्म समाज के समस्त लोगों का सही ढंग से जीवन व्यतीत करने और कानूनी ढंग से अपनी मांगों की आपूर्ति का आह्वान करता है।
इस्लाम धर्म की शिक्षाओं व आदेशों में लड़के और लड़कियों के जीवन के समस्त पहलुओं व जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। अतः समाज की परिस्थिति के दृष्टिगत इस्लाम एक समुचित व तार्किक सुझाव पेश करता है, ताकि यह संबंध कानूनी हो, चाहे वह थोड़ी ही समय के लिए क्यों न हो। इस्लाम के अनुसार विपरीत सेक्स की रुझान और उसकी पहचान इंसान की प्राकृतिक व मानसिक जरूरत है, और संस्कृति व समाज उसकी सीमा को निर्धारित करते हैं। जिन देशों में पारिवारिक संबंधों का आधार इस्लामी शिक्षाएं हैं, वहां बालिग होने के आरंभ से ही महरम व नामहरम अर्थात अपने और पराए मर्दों और औरतों के विषय को ध्यान में रखा जाता है। इस्लामी शिक्षा में जहां महिला को पर्दा करने के लिए कहा गया है, वहीं पुरुषों को पराई महिला को देखने में मना किया गया है। इसी प्रकार इस्लामी शिक्षा में आया है कि इस्लामी आवरण के साथ महिला सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकती है।
इस्लाम में अस्थायी विवाह का भी प्रावधान है। इस्लामी आदेशों और शिया धर्मशास्त्र की पुस्तकों में इस विषय का विस्तार से उल्लेख है। अलबत्ता मुसलमानों के कुछ ऐसे भी लोग व संप्रदाय हैं जो इसे बुरा समझते हैं और इसकी निंदा करते हैं। अस्थायी विवाह भी एक कानूनी व धार्मिक विवाह है। इसकी कुछ विशेषताएँ व शर्तें हैं, हालांकि वो स्थायी विवाह का स्थान कभी नहीं ले सकता और इससे वो अपेक्षाएं नहीं रखी जा सकती जो स्थायी विवाह से रखी जाती हैं।
अस्थायी विवाह स्थायी विवाह की तरह है। इसके कुछ विशेष अधिकार व शर्तें हैं जिनका मर्द और औरत दोनों को ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार दोनों अपनी मानवीय प्रतिष्ठा की सुरक्षा करते हैं। उस्ताद शहीद मुर्तजा मुतहरी कहते हैं, अस्थायी विवाह को धार्मिक व कानूनी इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्थायी विवाह हर स्थिति और हर हाल में इंसान की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, और केवल स्थायी विवाह के जरूरी होने से यह आवश्यक तब पेश आती है कि लोग कुछ समय के लिए सन्यासी व वैरागी बन जाएं या पूरी तरह यौन दुराचार में डूब जाएं। स्पष्ट है कि जब किसी भी लड़की या लड़के के लिए स्थायी विवाह की भूमि प्रशस्त होगी, तो वह कभी भी अस्थायी चीज में स्वयं को व्यस्त नहीं करेगा।
प्रतीत यह हो रहा है कि स्थायी विवाह में जो चीज सबसे अधिक इस्लाम के दृष्टिगत है, वो परिवार का गठन, संतान पैदा करना और अच्छी संतान का प्रशिक्षण है, जबकि अस्थायी विवाह में अधिकांश लक्ष्य यौन इच्छा व काम वासना की पूर्ति होती है और उसका असली उद्देश्य संतान पैदा करना नहीं होता। इस प्रकार के अस्थायी विवाह को मुता कहा जाता है। स्थायी और अस्थायी विवाह के परिणाम कुछ चीज़ों में सामने आते हैं, जबकि कुछ चीज़ों में एक दूसरे से भिन्न हैं। जो चीज़ दोनों को एक दूसरे से भिन्न करती है, उनमें से एक ये है कि अस्थायी विवाह में मर्द और औरत दोनों एक दूसरे से नियत समय तक विवाह करने का फैसला लेते हैं, और इसके बाद वो चाहें तो इसकी अवधि में वृद्धि कर सकते हैं या नियत समय के समाप्त होने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अस्थायी विवाह में दूसरी चीज़ जो दोनों विवाहों को एक दूसरे से भिन्न करती है, यह है कि मर्द और औरत अधिक आज़ादी के साथ शर्तें लगा सकते हैं।
मिसाल के तौर पर स्थायी विवाह में मर्द की जिम्मेदारी यह है कि वह औरत के खर्चे को दे, चाहे वह देना चाहे या ना देना चाहे, परंतु महिला के खर्च को देना मर्द पर अनिवार्य है। जबकि अस्थायी विवाह में ऐसा नहीं है, बल्कि उसका संबंध इस बात से है कि अस्थायी विवाह में मर्द और औरत ने विवाह से पहले क्या शर्त रखी थी। यह संभव है कि मर्द महिला के खर्च को देना ही नहीं चाहता या देना उसके लिए संभव नहीं है। इसी तरह यह भी संभव है कि महिला मर्द के पैसे का प्रयोग ही नहीं करना चाहती है।
कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम आपका ध्यान पवित्र कुरान के सूरह तहरीम की तीसरी आयत की ओर दिलाते हुए इस बिंदु को बताना चाहते हैं कि परिवार उस समय तक प्रसन्न व स्वस्थ रह सकता है जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के अधिकारों से अवगत हों। पवित्र कुरान के व्याख्याकर्ताओं ने इस आयत की व्याख्या में लिखा है कि एक दिन पैगंबर इस्लाम ने अपनी एक पत्नी से एक बात बताई और उनसे कहा कि ये बात किसी दूसरे को न बताना, यहाँ तक कि उनकी दूसरी पत्नी ही क्यों ना हो। लेकिन पैगंबर इस्लाम की उस पत्नी ने कुछ ही दिनों के बाद पैगंबर इस्लाम की दूसरी पत्नी से ये बात बता दी। महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने वही के जरिए पैगंबर इस्लाम को इस बात से सूचित कर दिया। महान ईश्वर इस घटना को बयान करते हुए पवित्र कुरान में कहता है, उस समय को याद करो जब पैगंबर ने अपने राज की एक बात अपनी एक पत्नी को बताई, लेकिन जब उसने बात खोल दी तो ईश्वर ने अपने पैगंबर को इस बात से सूचित कर दिया। उसके कुछ भाग को पैगंबर को बताया जबकि कुछ को बताने से परहेज किया। जब पैगंबर इस्लाम ने अपनी पत्नी से ये बात बताई तो वो बड़े अचरज से कहने लगी कि ये बात आपको किसने बताई। तो पैगंबर इस्लाम ने कहा कि सर्वज्ञाता ईश्वर ने हमें सूचित किया है।
पवित्र कुरान की यह आयत इस बात की सूचक है कि अमानतदारी केवल पैसे, प्रॉपर्टी और पति के जीवन की दूसरी चीजों की नहीं होती है। पत्नी को चाहिए कि पति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा को भी महत्व दे और उन राजों को भी फाश ना करे जिन्हें संभवतः पति किसी को नहीं बताना चाहता। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे की प्रतिष्ठा का सम्मान करे। पत्नी को इस बात की अनुमति नहीं है कि वह अपने पति के भेदों को दूसरों से बयान करे।